अब आयत 22 लिख लीजिए, शैतान की तकरीर, क़्यामत का दिन है। आयत 22 सूरत इब्राहीम, वक़ाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्रु, और कहेगा शैतान जब के कामों का फ़ैसला हो जाएगा, बेशक अल्लाह ने वादा किया तुमसे सच्चा वादा, और मैंने भी तुमसे एक वादा किया, लेकिन पस उसके ख़िलाफ़ कर दिया। क्या पता चला कि मैदान मख्शर में जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम में। अब वहाँ लोग एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे हैं और ख्वाहिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तुम मुझे इन अजाबों से दूर कर दो, इतने में क्या होगा। ये जो अगली आयात हैं, ये शैतान का मुकालमा है जो मैदान मख्शर में खड़ा होकर करेगा, यानी शैतान की तकरीर है। देखिए, झूठा शख्स उस वक्त सच बोल रहा है, सारी ज़िंदगी शैतान झूठ बोलता रहा और उस दिन सच बोलेगा कि अल्लाह के वादे सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी पूरा ना किया। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि शैतान वादा देता है तुम्हें किस बात का, मुफलसी का, कि फ़कीर ना हो जाना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तो कंगाल हो जाओगे। फहाशी के वादे देता है, बेहयाई को आम करता है, हराम चीज़ों को आसान कर देता है, कहता है मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी बुरा ना किया, मैंने तो तुम्हें बुराई की तरफ आने की दावत दी बस, और तुम लपक कर आए, आप मुझे मलामत ना करो। यानी शैतान हमें हुक्म नहीं दे सकता, वो सिर्फ टेम्प्ट करता है, एक आइडिया देता है, वसवस डालता है। शैतान का एक नाम खन्नास है, वसवसा डाल के दूर भाग जाने वाला। वही बातें यहाँ हो रही हैं। हम यहाँ अपना मुहासबा कर सकते हैं, क्या मैं शैतान के बहकावे को उज़र बनाते हुए गलत काम तो नहीं करती? क्या मुझे इस बात का यकीन है कि शैतान के वादे झूठे हैं? क्या मैं शैतान की दावत को, इसका हुक्म तो नहीं समझ लेती? और अगर नहीं समझते तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे शैतान के इस चुंगल से बचा दे। अब आगे बड़ी ही खूबसूरत आयतें आ रही हैं। आयत 24 से आगे दो तमसीलें हैं, आयत 24 और इससे अगली आयात कीमती आयात हैं। ये आयात पूरे दीन की नुमाइंदगी करती हैं, और वो क्या है, अलम तरकैफ दरबल्लाहु मसलन कलीमतन तैयिबा, कलीमतन तैयिबतन कशजरतन तैयिबा। क्या तुमने नहीं देखा किस तरह बयान करता है अल्लाह एक मिसाल एक पाकीज़ा कलमे की, जैसे कि वो एक पाकीज़ा दरख्त हो जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हों और उसकी शाखें आसमान में हों। वो हर मौसम में अल्लाह के हुक्म से फल देता है, और इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी मिसालें लोगों के लिए ताकि वो नसीहत पकड़ें। ये है तमसील, कैसे, आइए देखिए। यहाँ कलमे तय्यबा को एक दरख्त से तशबीह दी गई है। अगर देखा जाए तो ये सारे दीन का खुलासा है। आज के दौर में दीन के मामलात में बहुत सारी चीज़ें उलझन का शिकार हैं, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। तबलीग करते हैं तो तब भी इसको सही पेश नहीं कर पाते, और सबसे पहले जाकर हराम हलाल के मसले छेड़ते हैं। तो ज़रा सा दरख्त को देखिए, आप एक दरख्त उगाना चाहते हैं तो बीज और ज़मीन चाहिए। दरख्त में सबसे पहले बीज होता है, बीज क्या है, अल्लाह की मोहब्बत, ईमान, और ज़मीन क्या है, बंदा मोमिन का दिल। सबसे पहले दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत आती है, फिर जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें क्या हैं, बंदा मोमिन का दिल अल्लाह की मोहब्बत में घिर जाता है, जैसे जड़ें ज़मीन को घेर लेती हैं, इस तरह बंदे के दिल को अल्लाह की मोहब्बत घेर लेती है। कभी आपने आकाश बेल देखी होगी जो चारों तरफ से किसी चीज़ को पकड़ लेती है, यदि ऐसे वो जकड़ लेती है अपने हाथ में। अब जब दिल में ईमान आया, अल्लाह की मोहब्बत आई, तो वहाँ से एक छोटी सी कोम्पल निकली। अब ये क्या है, ये दिल का इजहार है, ईमान ज़ुबान पर आ रहा है। जिस वक्त कोई नया मुसलमान होने वाला कलमा पढ़ता है तो इसकी ज़ुबान ऐसे ही लरस रही होती है जैसे एक नन्ही सी कोम्पल हवाओं के साथ इधर उधर जा रही होती है। इस वक्त वो सीधी भी रह सकती है और गिर भी सकती है। ऐसे शख्स को हमारी मदद की बड़ी ज़रूरत होती है। अभी इसका ईमान कमज़ोर होता है, इसको ढारस देनी चाहिए। इसी तरह अगर आप में से कोई भी, आपके साथ कोई नया नया कुरान की तरफ आ रहा है, क्लासेस में आ रहा है, कभी बैठे ही नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम भी तो एक रस्मी इस्लाम था ना, तो वो लोग जो नए नए दिन की तरफ आ रहे हैं ना, उनको आप पुराने जमे हुए लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को प्यार से मोहब्बत से बुलाते रहिए ताकि उनका दिल जमता रहे। इसके बाद दिन ब दिन वो कोमल बढ़ती है, फिर मोटी होती है। अब वो दरख्त की शक्ल इख्तियार करती है। तो क्या पता चला कि जब दिल में ईमान जड़ें पकड़ जाता है, फिर बंदा जम जाता है, फिर वो नहीं हिलता। इसके बाद दरख्त में अगली चीज़ क्या है? तना, स्टैम्प। इस्लाम के 5 अरकान, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, ईमान। इसके बाद शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद जिस पर काम करना है, जिस शख्स को दीन की दावत देनी है, तो बात करेंगे जब अल्लाह की मोहब्बत आ गई, ईमान आ गया, इसके बाद फिर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। याद रखिए, अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर नमाज़ें भी फीकी हैं, हज का तो तसव्वुर नहीं हो सकता, ज़कात देनी तो मुहाल है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बाद हर आने वाला दिन इस दरख्त को मज़बूत करता है, फिर शाखें निकलती हैं। शाखें क्या हैं? ब्रांचेस क्या हैं? लोगों के साथ मामलात, हकूक़ुल इबाद, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों और हमसायों वगैरह के साथ। फिर वहाँ अखलाक के पत्ते उगते हैं, पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह मोमिन का अखलाक किसी भी माशरे का बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइंग एजेंट होता है। फिर आखिर में जाकर फल लगता है। ये वो फल है जो दुनिया के फल ईमान की सूरत में बनता है और जन्नत का फल बनता है। जब मोमिन जन्नत में जाने के काबिल हो जाता है, असल बात जो देखी जाती है आज के मुसलमानों की, वो कमी नहीं है कि इनको नमाज नहीं पढ़नी, आज ये भी नहीं कि इनको अखलाक अच्छा नहीं रखना। आज कमी फिर कहाँ है? जड़ें नहीं हैं, खोखला ईमान है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। किसी को दीन की तरफ बुलाना है, बच्चों को नमाज की दावत देनी है, तो पहले दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डालें। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा उठो नमाज पढ़ो, वो तो खुद पढ़ेगा। आगे जुमला लिखिए, हाईलाइट कीजिए, बहुत अहम बात है। अल्लाह की मोहब्बत वो ख़जाना है जिसके ऊपर एक बहुत भारी दरख्त भी उग जाए तो भी नहीं गिरता, और जड़ें हटा दें तो पहली ही हवा में गिर जाएगा। रमज़ान में देखा क्या कि लोग कुरान से जुड़ते हैं, और आजकल भी अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए, ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही होती है। रमज़ान के बाद भी अगर आप कुरान से जुड़े रहते हैं, तो जो चीज़ आपको कुरान से जोड़े रखती है, ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है। ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिल की ज़मीन पर बात करें। अगर दिल खट्टा है, दिल गंदा है, तो कुछ नहीं होगा। अगर दरख्त में से तने को निकाल दें तो क्या दरख्त रहेगा? नहीं रहेगा। आज कोई 5 वक्त नमाज ना पढ़े और कहे कि बड़ा नेक है वो, हाँ नमाज नहीं पढ़ता, तो झूठ होगा। अखलाक बहुत अच्छा है, नमाज नहीं पढ़ता, झूठ है ये। वो दरख्त गिर जाएगा। कोई सिर्फ तना खड़ा कर दे और कहे कि ये दरख्त है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ तना है। तो इसी तरह नमाज पढ़ पढ़ कर अपने आप को मोटा और बोझल कर लेना, और आपके ऊपर अखलाक के और मामलात के पत्ते नहीं हैं, तो दीन मुकम्मल नहीं है। दीन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, नोट करें। नंबर 1 अकीदा, इसमें दूसरा है मामलात, फिर अखलाक, और तीसरा दूसरों के साथ ताल्लुकात। यानी अकीदा, इबादत, इबादत का लफ्ज़ लिखिए इसमें। पहली चीज़ है अकीदा, फिर इसके बाद है इबादत, फिर हैं मामलात, फिर है अखलाक, दूसरों से ताल्लुक। इनको ठीक कर ले, इंशाल्लाह मज़बूत दरख्त बनेंगे। जैसे दुनिया के दरख्त इंसानियत को फ़ायदा देते हैं, तो मोमिन भी इंसानियत को फ़ायदा देंगे। देखिए, इस पर इंशाल्लाह ताला आपको कुछ एक्टिविटीज़ भेजी जा सकती हैं। इस्लाम A to Z पूरा कोर्स 1 महीने का हम लोगों ने किया अटलांटा से अमेरिका में। 4 वीक में पूरा दीन पढ़ा था। पहला वीक अकायद, इबादत, फिर मामलात और अखलाकियात। लेकिन ये जो मिसाल है, इस पर तो 20 ही हो गया, शायद सैकड़ों बार दर्स हो चुका है। यहाँ ज़रा से एक तकाबुल करते हैं, तवज्जो से देखिएगा। दरख्तों के साथ, यानी मोमिन बामुकाबला दरख्त कैसे होता है? जहाँ बहुत से दरख्त होते हैं, वहाँ की फ़िज़ा अच्छी होती है, दरख्त साया देते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन जहाँ भी जाता है, लोगों को अपना साया देता है। जहाँ मोमिनों का एक गिरोह रहता हो, वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए। हर दरख्त जाने से पहले फल देता है, और यही ईमान वाले से मतलूब है कि दुनिया से जाने से पहले कोई सदका जारिया औलाद की सूरत में छोड़ जाएँ। کوئی درخت دوسرے درخت کو نہیں کہتا کہ اگر وہ پھل دے گا تو میں دوں گا. ہم کیوں دوسروں کے رویوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو ہی میں اچھا کروں گی. لوگ درخت کی طرف پتھر مارتے ہیں اور درخت اس کے جواب میں پھل دیتا ہے. یہ مومن سے مطلوب ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو. اور اگر مومن یہ کہنے لگ جائیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو, وہ ایمان نہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دین کے نظریے کو واضح کریں, دلوں کو چیک کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں طیب درخت بنا دے, اور یہ کلمہ جو ہماری زبان کی نوک سے نکلتا ہے اس کو ہمارے دل سے گزارتے ہوئے جسم کے ایک ایک انگ میں لے آ. بہت پیاری مثال ہے یہ, اللہ تعالی ہمیں ایمان کا سرسبز و شاداب درخت بنا دے. اب اس اگلی ہی آیت میں اس کا اپوزٹ ہے, آیت 26 میں دوسری مثال ہے. یہ کفر کا کلمہ ہے, اللہ کی نافرمانی کی بات ہے. ہر گندی چیز ہر نافرمانی کی بات ہے, اس کے برعکس کلمہ طیبہ دل میں آئے گا تو جو ہی ملک الموت کو دیکھیں گے تو کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہاں مومن کی ثابت قدمی کی بات ہے. ساری زندگی مومن کوشش کرتا ہے کہ اپنے دین پر کوئی سمجھوتا نہ کرے, دین کو سب سے اوپر رکھتا ہے. اسلام اس کو سب سے پیارا ہوتا ہے, اس کو اپنا قرآن سب سے پیارا ہوتا ہے. آپ میں سے کس کس کو ہے؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ساری زندگی یہ قرآن ہمیں سب سے پیارا لگے. یہ ہے ثابت قدمی. اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے کہ جب دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے اور ملک الموت سامنے آ جاتا ہے, اس وقت پھر اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ آئے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جن کے دلوں میں کفر اور گندگی ہوگی, وہ زبان سے کیا بولیں گے سوچنے کی بات ہے. پھر اس کے بعد قبر کے سوالوں پر اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت رکھتا ہے. پھر محشر کی سختیوں میں جمے گا, بالآخر پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے گا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میری زندگی میں استقامت ہے؟ کیا اگر میں نیکی کا کوئی ارادہ کر لیتی ہوں تو اس پر جم جاتی ہوں؟ کیا ادھوری نیکیاں لے کر کل قیامت کے دن تو نہیں جاؤں گی؟ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اس کے باوجود کچھ لوگ کلمہ طیبہ سے ہٹ کر کلمہ خبیثہ پر آنے لگتے ہیں. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی ہماری توجہ دلاتے ہیں, آیت نمبر 28 میں, کہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد ایسے لوگوں نے اپنی اس نعمت کو کفر سے بدل دیا. الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. یہ کب ہوتا ہے؟ ایمان پا کر کفر کی نعمت میں آنا. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے آج کی رات جو کرنا چاہو کر لو, لیکن کل اٹھتے ہی تمہیں جلا دیا جائے گا یا آگ لگا دی جائے گی, تمہیں کسی بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے گا, تو بتائیے کیا اسے ایک رات کی بادشاہی بھی کوئی قبول کرے گا؟ بتائیے, نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا میں نے کیا کرنا ہے ایک رات کی بادشاہی کو, ساری رات یہی غم ہوگا کہ صبح بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جاؤں گا. بس اسی مثال کو سامنے رکھیں, جس کو تو اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی تو وہاں بھی کچھ کر کے ملے گا. جس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی وہ یہاں کے فائدے لے کر آخرت کے فائدے چھوڑے گا؟ بولیے نہیں. اگر یہاں کچھ کر کے ملتا ہے تو وہاں بھی کچھ کر کے ہی ملے گا. شیطان نے ایک دھوکہ دیا کہ یہاں تو کرنا پڑے گا, وہاں ویسے ہی مل جائے گا. کہا نہیں اگر نیکیاں نہ کی تو وہاں جھلسے جائیں گے. اور بڑی زبردست آیتیں ہیں جلنے کے ناطے سے اس سے اگلے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس طرح آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, قبر میں کوئی نہیں کہے گا کہ نماز پڑھو, میدان محشر میں کوئی نماز نہیں ہے, اور جنت میں جا کر بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنا مال خرچ کر لو, ادھر اس وقت خرچ کرو, اپنی جوانی لگاؤ, کل قبول نہیں کیا جائے گا. آئی 31 دیکھیے گا, قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, نماز قائم کرو اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے ان کو دیا, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ گہری دوستی. حقیقت یہ کہ دنیا میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم مال سے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلے وہ مشکل ٹل جائے. قیامت کے دن جب مشکل پڑے گی تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہی چاہیں گے, لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ ادھر خرچ کر لو, ادھر اس وقت خرچ کرو, اپنی جوانی لگاؤ, کل قبول نہیں کیا جائے گا. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, تب ہی اس کو مانا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, طلب کے ساتھ ہے. آج کل آپ سے کوئی کہے کہ موٹے وولن کپڑے خرید لو تو خریدیں گے؟ دل بھی نہیں کرے گا ہاتھ ڈالنے کو, طلب نہیں ہے نا. اسی طرح سردیوں میں لان کے کپڑے بیکار لگتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, نیکیاں کرنے کا اور خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, بعد میں پھر اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. آج اس دنیا میں ہمارے ایک ایک پیسے کی قدر ہے, ایک ایک منٹ کی قدر ہے. کل لے کے پھریں گے, کوئی ہمارا وقت قبول نہیں کرے گا, ہمارا مال قبول نہیں کرے گا. آج کرنے کی ضرورت ہے اس کو, اللہ کے نام پہ خاص خالص, کہ یہ اللہ میری دی ہوئی نعمتیں جو تو نے دی ہیں نا, اس کو اپنے رستوں میں لگا لے. اب اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض, تعارف کیا ہے؟ آیت 35 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے والی شخصیت, جس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور انہی کے نام پہ یہ سورت ہے. فرمائے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. کیا پتہ چلا کہ جو اپنی زندگی میں اللہ کے بن کر اللہ کے نام پہ جمے رہتے ہیں, بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بلند رکھتا ہے. پارے کا عنوان ہے نفس, اس کی حقیقت اور نفس کی ملامتیں. سورۃ ابراہیم کی جو آیت 24 سے 26 میں ہم نے دو قسم کے لوگوں کو دیکھا, تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے, اللہ نے اس کو دو چیزوں سے بنایا تھا, ایک جسم اور ایک روح. روح کی غذا قرآن اور اسلام ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. روح کو نفس بھی کہتے ہیں. نفس تین مختلف مراحل سے گزرتا ہے, نفس امارہ, لوامہ اور مطمئنہ. تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں اس کو, کیونکہ ہمارا نفس جو ہم خود ہیں, ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہمارے اندر کیا کچھ جوار بھاٹے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا سمجھیے گا. نفس امارہ میں فجور بھرا ہوتا ہے. فجور کیا ہے؟ کافر, فاجر کا لفظ سنا ہے اردو میں؟ گناہ, گناہ کا جذبہ. گناہ کی طرف بلاتا ہے. اور جو نفس لوامہ ہے, اس میں تقویٰ بھرا ہوتا ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے, فل ہمہا فجورہا و تقواہا, کہ ہم نے ان میں فجور بھی ڈال دیا اور تقویٰ بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے, دونوں کیفیات موجود ہیں ہمارے اس نفس کے اندر. نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کی رغبت بھی ہے, اور اسی نفس کے اندر نفس لوامہ کی وجہ سے تقویٰ اور نیکی کا جذبہ بھی ہے. یعنی دونوں صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں. نفس امارہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ دیکھیں نا, نفس امارہ, نیچے لفظ لکھیے فجور. فجور کی پھر آگے دو قسمیں, ایک مائنڈ میپ بن جائے گا, ظلم اور جہالت. ٹھیک ہے, نفس امارہ انسان کو ظلم کرنے پر مائل کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر دو طرح کی صفات ہیں, ایک ہے شیطانی صفات اور دوسری ہے ملکی یعنی فرشتوں والی صفات. شیطانی صفات جو انسان کے اندر ہیں, وہ فسق, سحر, نافرمانی اور نافرمانیوں میں آگے بڑھنا ہے, اللہ کے راستوں سے گمراہ کرنا, بدعت, دین سے دور ہونا اور کینہ رکھنا. اگر ہمارے اندر یہ صفات بڑھ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم شیطان کی صفات کو اپنے اندر لا چکے. اسی طرح کچھ صفات جو فرشتوں کو زیب دیتی ہیں, لیکن انسان ان کو کاپی کر کے اپنے اندر لانے لگتا ہے, اور وہ صفات انسانوں کو زیب نہیں دیتی. مثلاً تکبر, اطاعت نہ کرنا, دل کی سختی, ناراض ہونا, یہ صفات جب بڑھتی ہیں تو انسان دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے. نفس ہمارا کا ہدف کیا ہے؟ کہ بندہ خود بھی ظالم بنے اور دوسروں پر بھی ظلم کرے. یہ نفس امارہ کی مرغوب غذا ہے. ہائی لائٹ کیجیے اس جملے کو. نفس امارہ کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ ظلم. دوسروں پہ بھی کرو اور خوب کرو. اور دوسری پسندیدہ غذا ہے جہالت. نفس کی دو غذائیں, یعنی نفس امارہ کی دو پسندیدہ چیزیں ہیں, ظلم اور جہالت. ہمارا نفس جاہل رہنا چاہتا ہے, जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो हमारा नफ्स भी जाहिल रहना चाहता है। इसीलिए देखिए दुनिया में जहालत कितनी आम है, लोग जहालत के साथ मज़े कर रहे हैं। इसके अंदर फिर दो तरह की सिफात हैं, एक जानवरों वाली, चौपायों वाली, और दरिंदों वाली। एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करना, बुखल करना, फहाशी, अल्लाह की राह में खर्च ना करना, और अपनी जान पर खूब माल लौटाना, जिना, बुजदिली। फिर इसी तरह दरिंदों वाली सिफात में गफलत, भूल, लालच, ज़्यादती, कत्ल, सरकशी वगैरह। अब हम इन सारे लफ्ज़ों को अपनी ज़ात में ढूँढें, जहाँ जो चीज़ ज़्यादा देखें, समझ लें यह असल लेवल से बढ़ा हुआ है। जैसे जिस्म में कमी बेशी होती है ना कैल्शियम की, प्रोटीन की, तो हमें फ़िक्र लग जाती है, हम दवाइयाँ खाते हैं, चेक करवाते हैं। इसी तरह हमारे नफ्स में जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हम ज़ालिम बन जाते हैं या जाहिल रहते हैं। नफ्स हमारा का पूरा ज़ोर और उसका हदफ क्या है, हम ये करें, यानी ये जानवरों वाली और दरिंदों वाली सिफात हमारे अंदर आ जाएं। जो ही ये सिफात हमारे अंदर आती हैं इसका इलाज भी है, क्योंकि अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज रखा है। फौरन नफ्स लवामा हरकत में आता है। अब नफ्स लवामा की बुनियाद चूँकि तकवा है, तो तकवा कहाँ से हासिल होगा? देखिए ना कि नफ्स लवामा ने खूब ज़ोर लगाया हमें बिगाड़ने का। नफ्स लवामा में था फजूर, गुनाह की कैफियत। उसके अंदर फिर दो चीज़ें, जुल्म और जहालत, ठीक है। एक तरफ इंसान में दरिंदों वाली सिफात हैं, तो एक तरफ कह लीजिए कि चौपायों वाली भी हैं। नफ्स हमारा हमें खूब रुसवा करना चाहता है। जो ही वो करना चाहता है, नफ्स लवामा हरकत में आता है, तो नफ्स लवामा किस चीज़ से बना है? तकवा से। तकवा कहाँ से आता है? नंबर एक मुजाहिदा, मेहनत, जो इस वक्त आप कर रहे हैं, सख्त मेहनत, यकीन से, कुव्वत इरादी, अज़्म, तवक्कुल, सब्र, एहतसाब और हिम्मत वाले काम। अब इन सब चीज़ों को जब नफ्स अम्मारा के ख़िलाफ़ मुजाहिदा करना पड़ता है तो फिर नफ्स अम्मारा थोड़ा सा दब जाता है। तो कह लीजिए कि नफ्स अम्मारा को दबाने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो मुजाहिदा है। दूसरी चीज़ है मुहासबा। मुहासबे से तकवा मिलता है। इसके कई तरीके हैं। अल्लाह की पनाह में आएँ, क्योंकि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे बग़ैर शैतान से बच नहीं सकते। फिर इसी तरह एक चीज़ है तौबा और इस्तग़फ़ार। फिर इसी तरह एक है ख़ुद को सज़ा देना, इसको तादीब कहते हैं, अदब सिखाना। इसके बाद अदल व इंसाफ, यानी ज़िंदगी के अंदर इस तरह अदल को लाना कि फिर नुकसान हो या नफ़ा, अदल को ना छोड़ें। फिर एक चीज़ होती है मुराकबा। वो क्या है? सिद्क, अमानत, अहद, हया, बेदारी, एतबार कर लेना, इबरत लेना, एहतियात करना। ये सारी बातें हम वो फाफ वनी कोर्स में 3 दिन में कदरे डिटेल से कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। शैतान हर तकवा के रास्ते पर बैठा होता है और इंसान को नेकी से रोकता है। जिसका तकवा बढ़ेगा इसके अंदर ये 3 चीज़ें बढ़ेंगी। फिर इसके मुकाबले में तीसरा नफ्स पैदा होता है और वो नफ्स मुतमईना है। नफ्स मुतमईना को पाने के लिए 3 किस्म के अमल की ज़रूरत होती है। कौन से? दिल के अमल, आज़ा के अमल, कुछ ज़ुबान के हैं। मसलन दिल के अमल क्या हैं? तौहीद, यानी एक अल्लाह को अपने अंदर बिठाना। फिर इताअत का जज्बा कि अल्लाह ताला मैं तेरी मानूंगा। फिर तदब्बुर करें कायनात पर, कुरान पाक की आयतों पर। फिर गौर व फिक्र करें अल्लाह ताला के खौफ, उम्मीद, इखलास और इस्तकामत पर। सारी चीज़ें दिल में आती हैं तो दिल नफ्स मुतमईना बन जाता है, इत्मीनान वाला दिल बन जाता है। दिलों में ठंडी हवाएँ चलती हैं। फिर अज़ा की कुछ कैफियात हैं, मसलन तहारत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पाक दामनी और इत्तफाक़ वग़ैरह। फिर कुछ ज़ुबान के अमल की ज़रूरत है, जैसे ज़िक्र, दुआ, शुक्र, हम्द और अल्लाह से मदद मांगना। अब आपको ये सारी बातें नहीं भी समझ आ रही ना, डोंट वरी, इतना समझ लें कि इंसान बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम इतने सादे नहीं हैं जितने हम बज़ाहर देखने में लगते हैं। और ये भी देखिए कि अल्लाह ने इतनी मजबूत मशीनरी जो बनाई है सिर्फ इसलिए कि हम रोटी पानी खाएं और दुनिया से चले जाएं। बस ये कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत पेचीदा पुर्जे हैं, ठीक है, और आप सिर्फ़ इसको एज़ अ मिरर यूज़ करना शुरू कर दें कि इसमें अपनी शक्ल देख लूँ, तो नाकदरी होगी ना। असल ये बात समझिए, हम अपनी कदर करें। अल्लाह ने आपको मुझे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पैदा किया। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए इस दुनिया में जीने के बहुत सारे रास्ते रखे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कदर कर सकें, और अल्लाह ताला चाहता है कि हम ज़ाया ना हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कलमा तैयबा पर जमाए। कलमा खबीसा पर बंदा कब आता है? जब नफ्स अमारा गालिब आ जाता है। इंसान अल्लाह ताला की इताअत पर कब जमता है? जब नफ्स लवामा गालिब आ जाता है। नबियों के दिल नफ्स मुतमईना वाले होते थे। ये नफ्स के तकाजे दबाना ही जिहाद है, और इसी को जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। तो ये थे नफ्स के तकाजे।